समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्म दिवस। श्रोताओ, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मनोज, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज शगुन चोपड़ा विद मनोज and for you we have lined up lots of interesting stuff in this half an hour program. We will give you a selection of news. We'll be discussing about something very potent today in our discussion segment, Late Line India. We also have reports, capsules, tributes, and a lot more. Listeners, you can imagine we have a lot of material which we'll give you over the next 30 minutes. But we'll begin with the headlines first. India and Thailand sign agreements for cooperation in various fields, including IT, maritime, MSME, handicrafts, and handloom sectors.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके थाई समकक्ष पैतोंग टार्न श्रीनवात्रा ने बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता की।
डिस्कशन अंडरवे ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इन राज्यसभा।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त 25,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त किया।
इंडिया टू एनालाइज एंड असेस इम्पैक्ट ऑफ 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएस।
और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे।
And now, listeners, it's time for our segment, Dateline India. And today we will be taking a look at the developments at the national and global level. And today we are discussing about the topic of water harvesting. And in such scorching heat, this is an essential matter to discuss, right, Manoj? The temperatures are soaring. And to begin with, well, water harvesting, very essential technique. It is to collect and store the rainwater. And this collected water then can be later utilized for various purposes, such as agriculture purposes and other purposes as well. And addressing the nation in his Mann Ki Baat program, now we'll focus on that, on Akashwani last Sunday, Prime Minister Narendra Modi touched upon this topic, water harvesting. Prime Minister Modi, he said, as soon as some approaches, preparations for saving water have begun already in many cities and also in many villages, and rightly so.
जी, उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचयन और जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई गैर सरकारी संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं और देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज और सामुदायिक सोख गड्ढे बनाए जा रहे हैं।
Well, touching upon this topic further, well, Mr. Modi, he further stated that like every year, preparations have been made on a war footing for this particular campaign, which is Catch the Rain campaign, and this year as well. He added that Jal Sanchay Jan Bhagidari Abhiyan is also being run to connect more and more people with water conservation. He stressed that the endeavor, it is to safely pass on the natural resources टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइटली सो।
जी, प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण से जुड़े अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि पिछले 7 से 8 वर्षों के दौरान नव निर्मित टैंकों, तालाबों और अन्य जल पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी संरक्षित किया गया है
और देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से देश के अलग अलग हिस्सों में 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के संरक्षण का इंतजाम कर दिया है ना, ये शानदार प्रयास।
Well, Mr. Modi is praising the efforts of the countrymen, and he also said that this led to the conservation of 11 billion cubic meters of water in different parts of the country. He also elaborated that even the Govind Sagar Lake, with a length of more than 90 kilometers, can conserve only 9 to 10 billion cubic meters, and this was here 11 billion cubic meters of water.
जी, श्री मोदी ने कर्नाटक के गडक जिले के लोगों द्वारा एक सूखी हुई झील को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की भी सराहना की. ग्रामीणों और आसपास के सामाजिक संगठनों ने झील में जमा कचरे और कीचड़ को साफ करने में कामयाबी हासिल की. उन्होंने इसे कैच द रेन अभियान का एक बेहतरीन उदाहरण बताया. उन्होंने श्रोताओं से इस अभियान को एक जन आंदोलन में बदलने का आग्रह किया.
वेल, रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड वाटर डे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च द सिक्स्थ एडिशन जल शक्ति अभियान, विच इज कैच द रेन कैंपेन 2025 ऑन 22nd मार्च 2025. दिस वॉज द वर्ल्ड वाटर डे एंड द थीम, लेट मी टेल यू द थीम लिसनर्स, पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन towards intensified community connect, jal sanchay, jan bhagidari, jan jagrukta ki or.
Har saal ki tarah is baar bhi catch the rain abhiyan ke liye kamar kas li gayi hai. Ye abhiyan bhi sarkar ka nahi balki samaj ka hai, janta janardan ka hai. Jal sanrakshan se zyada logon ko jodne ke liye jal sanchay jan bhagidari abhiyan bhi chalaya ja raha hai. Prayas yahi hai कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है.
सरकार ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए भारत भर में 148 जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर बूंद मायने रखती है के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. जल जंगल जन अभियान को वनों, नदियों और झरनों के बीच पारिस्थितिकी संबंधों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था.
Also, Manoj, now let me talk about the Jal Shakti Abhiyan a bit more. Catch the rain 2025. The aim here, listeners, it is to drive nationwide awareness and also action for water conservation, because action is really important. And the vision, making this vision, हर बूंद अनमोल, एवरी ड्रॉप काउंट्स, अ रियलिटी, अ लिविंग रियलिटी, बिकॉज यस डेफिनेटली एवरी ड्रॉप काउंट्स. एंड दिस कैंपेन ऑल्सो कॉल्स अपॉन ऑल सिटीजन्स टू जॉइन हैंड्स इन सिक्योरिंग इंडियाज वाटर फ्यूचर थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन. एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट.
क्या आप जानते हैं कि ये कोई नई तकनीक नहीं है श्रोताओ? मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने भारत की प्राचीन जल संचयन प्रणालियों के बारे में सुना होगा. और अगर कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं तो हम आपको और बताते हैं
जी.
क्या आपने अग्रसेन की बावली देखी है? कनॉट प्लेस में अग्रसेन की बावली एक आकर्षक मध्ययुगीन वातावरण वाली सीढ़ीदार कुआं यानी बावली है, जो आज भी कनॉट प्लेस के आधुनिक उच्च वृद्धि वाले कार्यालय ब्लॉकों के बीच में मौजूद है.
Well, let me tell a little bit about Bavli as well here. A stepwell structure with arches, carved motifs, and also it consists of rooms. Its key features, let me tell them, carvings, rooms, seasonal water collection. So this had been happening from a very long time. It is integral to urban water storage in low rainfall areas, very well needed over there, right? And it can be, even now, found in many states like Rajasthan, also Gujarat, Karnataka. And the Rajasthan's example is Chandi Bauri, Rajasthan, there. And now tell me, Manoj, have you heard of Suraj Kund?
जी हाँ, इसी के बारे में आगे बताया जा रहा है. हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित सूरज कुंड एक जलाशय है जिसे 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरज पाल ने बनवाया था. सूरज कुंड नाम का अर्थ है सूर्य की झील. सूरज कुंड वार्षिक सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय शिल्प मेलों में से एक है. तो कुंड एक तश्तरी के आकार का जल ग्रहण क्षेत्र है जिसमें एक केंद्रीय गोलाकार भूमिगत कुआं है जो पारंपरिक रूप से चूने और राख से बना है. इसमें मूल रूप से एक जल ग्रहण क्षेत्र, गोलाकार कुआं, पारंपरिक अस्तर है.
Now next let me talk about jhalar, jhalaras. They are rectangular stepwells with tiered steps on three or four sides designed to collect water from reservoirs or the lakes as well. These can be found in Rajasthan, those architectures which have tiered steps and have a rectangular in shape, these jhalaras.
और अगर कुछ तथ्यों पर नजर डालें तो क्या आप जानते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर भूजल का सबसे बड़ा निष्कर्षण करता है, जो दुनिया के भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% हिस्सा है। अत्यधिक निकासी के कारण जल भृतुओं में खतरनाक कमी आई है। तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने पानी की मांग को बढ़ा दिया है, साथ ही जल प्रदूषण में भी योगदान दिया है।
Well, we may not believe this while sitting in our comfortable homes, in the comfort, in the cities. But in some rural areas and the villages, the time burden of water collection, particularly on girls, often forces them to miss school even today. This hinders their education and also the long-term opportunities as well. And if we now talk about the waterborne illnesses and malnutrition, this can be caused by water scarcity and it can lead to cognitive impairment among children.
जी विश्व बैंक का अनुमान है कि अगर पानी की कमी को अनदेखा किया गया तो 2050 तक भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक का नुकसान हो सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि और विकास में काफी बाधा आ सकती है। पानी की कमी व्यवसायों को पानी गहन उद्योगों में निवेश करने से रोक सकती है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों पर असर पड़ सकता है।
Well, listeners, the problem may appear to be big, but the solutions to tackle these problems are very simple and they are easy to apply here. And children, they often emulate their adults' behavior. So adults can set a positive example by practicing water-saving habits in daily life, right? And also the way forward involves a holistic strategy, including groundwater assessment, watershed management, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट?
जी हाँ, इसके अलावा जागरूकता अभियान, संस्थागत सुधार और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। सही नीतियों, सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी नवाचारों के साथ भारत टिकाऊ जल प्रबंधन की ओर बढ़ सकता है, जिससे सभी के लिए सुरक्षित और न्याय संगत जल भविष्य सुनिश्चित हो सके।
ऑल्सो वी वुड लाइक टू से रेन टूडे कैन बी वॉटर फॉर टूमोरो, सो हार्वेस्ट इट।
लोगों को इंतजार है बारिश के मौसम का। वाकई ये कैच द रेन अभियान का शानदार उदाहरण है। आप भी सामुदायिक स्तर पर ऐसे प्रयासों से जुड़ सकते हैं। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी से योजना जरूर बनाइए। और आपको एक और बात याद रखनी है, हो सके तो गर्मियों में अपने घर के आगे मटके में ठंडा जल जरूर रखिए। घर की छत पर या बरामदे में भी पक्षियों के लिए पानी रखिए। देखिएगा ये पुण्य कार्य करके आपको कितना अच्छा लगेगा।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। बिहार में चैत मास में होने वाली छठ पूजा का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। लोक आस्था के इस महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
गर्मियों में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को काफी कठिन माना जाता है। खरना के अनुष्ठान के बाद छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। आज संध्या डूबते हुए सूर्य को सांध्य अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। श्रद्धालु विभिन्न नदी घाटों पर कमर भर पानी में भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। नदियों के अलावा विभिन्न तालाबों और पोखरों में छठ व्रती अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ महापर्व साल में 2 बार आता है। स्वच्छता और प्रकृति प्रेम को समर्पित जन जन के इस महापर्व में धार्मिक, सांप्रदायिक और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर लोग भाग लेते हैं। गंगा, गंडक, बागमती, सोन, कोसी सहित राज्य में विभिन्न नदी घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पटना जिला प्रशासन की ओर से शहर में 40 से अधिक छठ घाट बनाए गए हैं। राज्य के प्रमुख सूर्य मंदिरों में छठ की रिपीट राज्य के प्रमुख सूर्य मंदिरों में छठ पूजा की धूम है। बिहार के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से लोग छठ पूजा करने पहुँचे हुए हैं और औरंगाबाद जिले में रिपीट। औरंगाबाद जिले के देव स्थित सूर्य मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। यहां विशेष छठ मेला का आयोजन किया गया है। कल उदय होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। छठ व्रती भगवान भास्कर और उनकी छठी मैया की पूजा अर्चना के बाद पारण करेंगी। इसके साथ ही चार दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर भक्तिमय गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
Well, listeners, in a significant achievement under the 100-day TB Mukt Bharat Abhiyan campaign launched by the Government of India, Vijayanagaram district in Andhra Pradesh has emerged as the top performer among 347 districts. This campaign aimed to accelerate tuberculosis detection, reduce mortality and prevent new cases across India. We have more on this from our correspondent.
The TB Mukt Bharat Abhiyan, part of the National TB Elimination Program under the National Health Mission, targeted 347 priority districts across 33 states and union territories. The campaign focused on early identification and appropriate management of TB cases, with the Department of Health and Family Welfare assigning special officers to oversee implementation in each district. Under this campaign, Vijayanagaram's district administration conducted TrueNAT TB tests for 45,195 individuals and chest X-rays for 23,398 people, leading to the identification of 469 TB cases. The district's efforts were recognized on World TB Day, March 24, when Union Health Minister Dr. J.P. Nadda presented an appreciation certificate to the district administration. District Collector Dr. B.R. Ambedkar commended the dedication of health officials and emphasized the community's role in striving towards a TB-free Vijayanagaram. Vijayanagaram's exemplary performance highlights the effectiveness of coordinated efforts between national schemes and district authorities in combating tuberculosis, setting a benchmark for other regions in the country's fight against this disease. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
महाराष्ट्र में हाल ही में गुड़ी पड़वा यानी मराठी नववर्ष का पहला दिन धूमधाम से मनाया गया। हर घर पर पारंपरिक तरीके से सजाई गई गुड़ियां खड़ी की गई, जिन्होंने नए साल का स्वागत उत्साह के साथ किया। इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव में एक अलग ही तरह की गुड़ी बनाई गई, जो न सिर्फ अनोखी थी बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रही थी। आइए हमारी मुंबई संवाददाता से और जानकारी लेते हैं।
जलगांव के एक स्कूल में कला शिक्षक के रूप में काम कर रहे सुनील दाभाड़े ने गुड़ी पाड़वा के दिन किताबों से बनी एक गुड़ी तैयार की। इसका मकसद सभी को, खासकर विद्यार्थियों को, किताबों का महत्व समझाना और उनमें पढ़ने की रुचि जगाना है। इस बारे में सुनील दाभाड़े खुद बता रहे हैं।
प्रत्येक छात्रों के हाथों में आजकल एंड्रॉइड मोबाइल फोन आ चुका है। किताब छात्रों के जीवन से नष्ट हो रही है। मैं इस गुड़ी को 2-3 सालों से करते आ रहा हूँ और इसका महत्व भी छात्रों को समझाते आ रहा हूँ। इस किताबों में मैंने एजुकेशनल प्रतियोगिता, परीक्षा गाइड, आत्मकथा, विभिन्न कलाओं की किताबें, चित्र, कविता, भारतीय संविधान की किताबें, स्वास्थ्य मार्गदर्शन, इस सब विषय पर आधारित मैंने इस किताब की गुड़ी खड़ी की है। इस गुड़ी बनाने के लिए मेरे पिताजी, मेरी धर्म पत्नी दीक्षा और मेरा बेटा शौर्य, इन्होंने मुझे सहकारी की।
उन्होंने बनाई हुई इस गुड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य टिळक जैसी महान हस्तियों के जीवन और कार्यों पर आधारित किताबें शामिल थी। सुनील दाभाड़े कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि हर घर में एक छोटा पुस्तकालय हो और किताबों से सबका रिश्ता बने। पुस्तकों से तैयार की गई इस अनोखी गुड़ी की ये अनोखी पहल नए साल की खुशियों के साथ साथ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी हमें दिखाती है, जहां हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन के साथ साथ किताब भी हो। परिक्रमा के लिए जलगांव से राजेश यावलकर के साथ मुंबई से अंकिता आपटे।
नाउ लेट्स गिव यू द लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स। The benchmark domestic equity indices today ended with modest losses, weighed down by the information technology pack and auto sectors due to growth slowdown concerns following US President Donald Trump's announcement of reciprocal tariff. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange Sensex slipped 322 points to close at 76,295. The National Stock Exchange Nifty 50 dropped 82 points to settle at 23,250. In the global crude market, Brent crude was trading over 4.1% down at $71.84 per barrel, and WTI crude was trading over 4.4% lower at $68.55 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading flat at 89,350 rupees per 10 grams, and silver 9.9 fine was trading down at 96,210 rupees per kilogram when reports last came in.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. IPL T20 क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.
Now talking about hockey, the 15th Hockey India Senior Men National Championship is set to kick off tomorrow at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium in Jhansi, Uttar Pradesh. The tournament, which will run until April 15, will follow a new division-based format similar to the Senior Women's Championship, which was held in March. And now, we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
3rd April is the birth anniversary of freedom fighter and social activist Kamala Devi Chattopadhyay, who was born on April the 3rd, 1903, in Mangaluru. Common at the time, she was married at the tender age of 14 and was widowed only 2 years later. Kamala later became friends with Sarojini Naidu's younger sister, Suhasini Chattopadhyay, who introduced Kamala to their older brother, Harindranath. The two bonded over a love for the arts and theatre and married in the face of much societal opposition. Kamala's father-in-law was a progressive thinker and encouraged her to continue her education.
In 1927, Kamala joined the Indian National Congress and threw herself amidst the freedom struggle. She joined the Seva Dal and then became an outspoken supporter of the Salt Satyagraha. She was a part of the 7-member lead team announced by Mahatma Gandhi in the Salt Satyagraha of 1930 to prepare salt at the Bombay beachfront.
When World War II broke out, Kamala Devi was in England and she immediately began a world tour to represent India's situation to other countries and gather international support for independence after the war. During the partition of 1947, Kamala Devi worked tirelessly in helping the migrants to establish new homes. She also helped set up health facilities for the people affected due to the traumatic partition of 1947.
Kamala Devi worked relentlessly for the upliftment of women. She pioneered the cooperative movement, which helped raise the socio-economic status of women in the country.
Kamala Devi was an art enthusiast and worked to propagate art and culture of India. She focused on reviving the handicrafts and textiles of India. Chattopadhyay also set up the National School of Drama and later headed the Sangeet Natak Academy. Chattopadhyay also wrote about 20 books, many of which were inspired by her personal experiences during visits to foreign countries.
She was honored for her groundbreaking work with the Padma Bhushan in 1955 and with the Padma Vibhushan in 1987. In 1966, she was also awarded the Ramon Magsaysay Award for Community Leadership. In 1974, she was awarded the titles of Ratna Sadasya by the Sangeet Natak Academy and Desi Kottamma by Shanti Niketan, the highest awards of both the organizations. On the 29th of October 1988, Kamala Devi Chattopadhyay breathed her last.
We also remember Bhuta Singh, Chuhur Singh, and Imam Ali, who was supposed in the Ludhiana Sikh Regiment of the British Indian Army. In 1857, they were posted in the Satluj Division. Influenced by the activities in Delhi and Meerut, these sepoys took active part in fighting against the British Army during the First War of Independence in 1857. However, they were captured by the British soldiers and charged with disloyalty and mutiny against the British rule. Bhoota Singh, Chuhur Singh and Imam Ali were tried and sentenced to death. They were hanged on the 3rd of April, 1858.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। आज पुण्यतिथि है ख्याल ठुमरी और भजन गायिका किशोरी रविंद्र अमोनकर की। जयपुर घराने से संबंधित किशोरी अमोनकर भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वे शास्त्रीय शैली ख्याल और हल्की शास्त्रीय शैली ठुमरी भजन की कलाकार थी। उन्होंने अपनी माँ मोगूबाई कुर्दीकर से संगीत की शिक्षा ली, जो जयपुर घराने की शास्त्रीय गायिका थीं। अमोनकर को भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे बेहतरीन गायिकाओं में गिना जाता है। कोकिल कंठी किशोरी अमोनकर की सुरीली आवाज से देश विदेश के लाखों संगीत रसिक मंत्रमुग्ध होते हैं। संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अमोनकर को वर्ष 1987 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2010 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप दी गई।
One of the finest Hindustani classical singers here for you. Now let me talk about another singer and actress, Doris Day. Well, she has sang with the several big bands and also she started singing on local radio programs. This song, Ke Sera Sera, it was for the film. And the song became one of her trademark tunes and she used it as the theme for her television series also, which was called The Doris Day Show. Let's listen to that here.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich?
आज कोरियोग्राफर, फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता प्रभु देवा का जन्मदिन है। उन्होंने मुख्य रूप से तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 2019 में उन्हें नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 3 अप्रैल 1973 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था।
Now let's talk about another singer and he also sang playback, bhajan and also ghazal. Hariharan, I'm talking about Hariharan today, it's his birthday. He has sang in many languages like Tamil also, Malayalam, Hindi, Kannada and also Telugu languages. In 2004, he was honored with the Padma Shri here and is also a two-time national award winner. And to celebrate a musician's voice, we have to listen to a song by him.
तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे।
आज हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका और कथाकार मन्नू भंडारी की जयंती है। महिलाओं की आजादी जैसे विषयों पर लिखने वाली और नई कहानी की सशक्त हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यासों से है। आइए सुनते हैं महाभोज नाटक का कुछ अंश।
नजर हमेशा अपनी हार जीत पर मत रखो। कितनी बार समझाया आज का तुम्हारा आवेश देखकर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। एकदम नहीं। मेरे साथ चलना है तो अपनी ये वाणी पर नियंत्रण दो और व्यवहार में ठहराव लाओ, समझे? ठहराव चाहिए व्यवहार में। राजनीति मेरे लिए धर्मनीति से कम नहीं है। मेरा साथ चाहती हो तो गीता का उपदेश प्राण मान लो, निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ बस।
Well, today it's also the birth anniversary of Marlon Brando, the actor. Well, he was the foremost example of the method acting style and became notorious with his mumbling diction. And to listen to that, we have this dialogue.
Sir, I cannot do.
I'll give you anything you ask.
We've known each other many years, but this is the first time you ever came to the council of the house.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मनोज और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।